मोक्षमार्गस्निहितारं भेत्तारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पहले अध्याय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताया, फिर मिथ्या ज्ञान के बारे में भी वर्णन किया और नयों का वर्णन किया। नयों के लक्षण उन्होंने स्पष्ट किए। अब दूसरे अध्याय में जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के विषय हैं, वो तत्वार्थ है। तत्वार्थ पर सम्यक दर्शन श्रद्धान करता है और तत्वार्थों को सम्यक ज्ञान जानता है। तो वो ज्ञान और श्रद्धान के विषय होने के कारण अब क्रमशः उन तत्वार्थों को आचार्य महाराज विस्तार से बतला रहे हैं। एक एक अध्याय उन तत्वार्थों पर आचार्य महाराज दे रहे हैं। आहा, सम्यक दर्शनस्य विषय भावेन उपदिष्टेषु जीवादिषु आदौ उपन्यस्तस्य जीवस्य किं स्वतत्त्वमित्युच्यते। अथ द्वितीय अध्याय। अब ये दूसरा अध्याय कहते हैं कि सम्यक दर्शन के विषय भाव से उपदिष्ट जो जीवादिक हैं, उनमें सर्वप्रथम प्रस्तुत किया हुआ जो जीव है, उस जीव का क्या स्वतत्व है, क्या स्वरूप है, इस प्रश्न के उठने पर उच्चते वो जीव का स्वरूप कहा जाता है। तो प्रथम सूत्र अवतरित होता है, औपशमिक क्षायिक भाव मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिक उच्च। जीवस्य स्वतत्वम, जीव के जो स्वतत्व है, तत्व का अर्थ भाव होता है, तस्य भावस्तत्वम, स्वभाव होता है तत्व। तो जीव का जो निज स्वभाव है, स्वतत्व, वो इन पंच भाव रूप है, औपशमिक क्षायिक मिश्र यानी क्षायोपशमिक। अब इस सूत्र में कोई प्रश्न कर सकता है कि सूत्र का नियम तो ऐसा है कि जिस शब्द में अक्षर अल्प होते हैं उसको पहले लिखा जाता है और जिसमें अक्षर अधिक होते हैं उसको बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पर औपशमिक में 5 अक्षर है और क्षायिक में 3 है, तो औपशमिक को पहले क्यों लिखा? तो उसका उत्तर है कि औपशमिक सबसे पहले होता है। कोई दूसरा विकल्प बन ही नहीं सकता। किसी भी जीव को पहली बार जब सम्यक दर्शन होगा तो वो औपशमिक ही होगा, इसलिए उसको पहले लिखना अनिवार्य था। फिर मिश्र में तो क्षयोपशमिक भाव आ गया, फिर औदयिक और पारिणामिक, ऐसे 5 भाव जीव के निज स्वभाव है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि हमने तो सुना था कि ज्ञान और दर्शन ही जीव का निज स्वभाव है, ये क्या बात है, लिख दिया आचार्य उमा स्वामी ने। औदयिक भाव में तो कषाय भी आती है। कषाय को आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं कि जीव का निज स्वभाव है। आगे चलकर के इसके भेद भी बताएंगे। औपशमिक भाव के दो भेद होते हैं, क्षयिक के 9 भेद होते हैं, फिर क्षयोपशमिक के 18 भेद होते हैं, औदयिक के 21 भेद होते हैं और पारिणामिक के 3 भेद होते हैं। ये आगामी सूत्र में आने ही वाला है। तो फिर ये कषाय भी जीव का निज स्वभाव कैसे हो सकता है? तो इसका समाधान अपन देखेंगे आगे। पहले जो कर्म होते हैं वो उनकी अवधि पूर्ण होने पर, जो उनका स्थिति बंद हुआ है, कालावधि है उनकी, वो जब पूर्ण होने होती है, पूर्ण होने को होती है, तब फिर वो जीव को छोड़ देते हैं, जीव के प्रदेशों से अलग हो जाते हैं। लेकिन अलग 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 होते समय वो जब द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इनके निमित्त से फल देकर के अलग होते हैं, उसका नाम उदय है। द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मण फल प्राप्ति हृदय, ये परिभाषा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसी ग्रंथ में दी है। इसी सूत्र की टीका में दी है। तो वो उदय में आते हैं और फिर जैसे 8वें अध्याय में लिखा, ततश्च निर्जरा, उसके बाद क्या होता है, निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं, जड़ जाते हैं, उसको सविपाक निर्जरा कहते हैं। विपाक यानी फल उदय में आकर के पक करके फिर जड़ जाते हैं, जैसे पेड़ों में फल पकते हैं और फिर नीचे गिर करके अलग हो जाते हैं। तो उदय में आने वाले कुछ ऐसे कर्म हैं जिनको आत्मा अपने भावों से शांत कर सकता है, कुछ काल पर्यंत उन कर्मों को अंतर्मुहूर्त तक उदय में आने से रोक सकता है ये जीव। तो उतने समय के लिए, जैसे पिटकरी डाल दो तो फिर जो पानी में मिट्टी होता है, होती है, ऐसे घुमा देते हैं तो मिट्टी ऐसे नीचे बैठ जाती है। सन 1988 में हम लोग, एक बार की बात है, विहार करते हुए चतुर्मास के पहले, जब नदी में पानी मैला हो जाता है ना, बारिश वारिश गिरती है तो पानी नदी का साफ नहीं होता, मैला हो जाता है। तो एक नदी के किनारे हम लोग रात्रि विश्राम के लिए, पगारा नाम की जगह थी अशोकनगर और गुना के बीच में, एक पंप हाउस था पानी का, वहां रुकते हैं। तो वहां नदी से जो पानी खींच करके आता है और वहां पर शुद्ध होता है, साफ होता है, और उसके बाद फिर नलों में जाता है वो घर घर तक। तो वहां हम लोग गए, बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी टंकियां थी लाइन से, तो उसमें जो फिटकरी वाली टंकी थी उसमें देखा कि वो नदी का जो मटमैला पानी आता है उसमें, वो जैसी फिटकरी वाली उसमें आता है तो जैसे दही जमता है, दूध का जैसे दही जमता है ना, और दही में पानी भी निकलता है कभी कभी, तो वैसे ही वहां मिट्टी जम जम करके निकल रही थी और फिर पानी एकदम अलग दूसरे उसमें चला जाता था। तो इसी तरह अपने किसी परिणाम विशेष से आत्मनि कर्मण स्वशक्ते ही कारणवशाद अनुद्भूति रूपशमा, आत्मा में कर्म का अपनी शक्ति के साथ या अपनी शक्ति के कारणवश प्रकट न होना, उदय में न आना उपशम कहलाता है। तो ऐसे परिणाम होते हैं जीव के कि वो कर्म ऐसे नीचे दब जाता है, जैसे फिटकरी के कारण वो मिट्टी नीचे बैठ गई। अब अगर उसको मिट्टी को हिला दिया जाए तो फिर वो पूरा वापस फैल जाएगी, मिट्टी अभी है उसमें, वैसे ये कर्म है आत्मा में। बैठा ले गए उनको नीचे, तो उन कर्मों को नीचे बैठालने पर, अनुदय में रखने पर जो निर्मलता आती है उसको उपशम औपशमिक भाव कहते हैं। नीचे बैठना उपशम और उपशमे भव औपशमिक, ये व्याकरण से व्युत्पत्ति बनती है। उपशम होने पर जो भाव आता है, जो निर्मलता आती है, उसको औपशमिक भाव कहते हैं। और इसके दो ही भेद हैं, एक सम्यक दर्शन है और एक यथाख्यात चारित्र है। ये दोनों उपशम से हो सकते हैं, बाकी और भाव नहीं होते उपशम से। उपशम से ये दो भाव होते हैं। फिर क्षयिक भाव किसको कहते हैं? क्षय अत्यंत की निवृत्ति, क्षय का अर्थ होता है पूर्णतः विनष्ट हो जाना। तो जब आत्म प्रदेशों से वो कर्म जो क्षय के योग्य हैं वो क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, यानी हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, कभी वापस आ ही नहीं सकते, तो वैसी प्रक्रिया होने पर, क्षय होने पर जो भाव आता है उसको क्षयिक भाव कहते हैं। क्षये भव क्षयिका, यथा तस्मिन्नेवाम्बसि शुचि भाजनांतर संक्रांते पंकस्यात्यंत अभाव। जैसे उसी टंकी में जहां पर फिटकरी घुमा गई, घुमाई गई और मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी को अगर निकाल लिया जाए अलग से स्वच्छ, तो अब उसको कितना भी हिलाओ या उसके अंदर कुछ भी करो तो वो मैली नहीं, मैला नहीं हो सकता, तो वो क्षय है। तो जब आत्मा से क्षय, कर्मों का क्षय होता है, तब वैसी निर्मलता आ जाती है परमानेंट, कभी वो निर्मलता नष्ट नहीं होती। जैसे क्षयिक सम्यक दर्शन हुआ तो वो क्षयिक सम्यक दर्शन कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो जो मिट्टी थी वो ही अलग हो गई, अब कैसे नष्ट हो सकता वो, जो चीज बची ही नहीं और जिसके आने पर ही मलिनता आती थी वो मैल ही अलग हो गया, तो अब मैला कैसे हो सकता है, परमानेंट हो गया, शुद्ध हो गया, क्षयिक सम्यक दर्शन। ऐसे और भी क्षयिक भाव है, नौ क्षयिक भाव है। फिर मिश्र भाव का अर्थ होता है क्षीणा क्षीण वृत्ति, यानी कुछ उपशम है कुछ क्षय है, वो दब गया, सर्वघाती के रूप में उदय में नहीं आएगा वो कर्म, तो मैला तो नहीं होगा पर देशघाती के रूप में उदय में आएगा, थोड़ा मैला होगा। जैसे अपना जो ज्ञान है वो क्षयोपशमिक है, तो क्षयोपशमिक ज्ञान होने के कारण जितना अपन जान रहे हैं वो सर्वघाती के क्षयोपशम से जान रहे हैं, और देशघाती का उदय भी है साथ में। और सर्वघाती का जब उदय रहता है तो फिर बिल्कुल नहीं जान सकते सर्व। अब ज्ञानावरण ऐसी प्रकृति है कि क्या होता है कि कर्मों की घाती कर्म और अघाती कर्म ऐसी दो प्रकृतियां हैं। घाती कर्म में दो प्रकार की प्रकृतियां हैं, देशघाती और सर्वघाती। अब देशघाती प्रकृतियों में दो प्रकार के स्पर्धक हैं, देशघाती और सर्वघाती। जैसे ज्ञानावरण जो है देशघाती है, लेकिन उसमें स्पर्धक दो प्रकार के हैं, केवल ज्ञानावरण जो है वो सर्वघाती है, बाकी ज्ञानावरण जो है वो देशघाती है। तो देशघाती में से भी सर्वघातियों का उदय होगा, स्पर्धकों का, तो फिर वो ज्ञान काम नहीं करके। जैसे अभी अपने कौन से कर्मों का उदय चल रहा है ज्ञानावरण में से? मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, क्योंकि वो काम कर रहा है। अवधि ज्ञानावरण मन परे ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं है, मतलब उनके सर्वघाती स्पर्धक उदय में है। सर्वघाती स्पर्धक उदय में है इसलिए अपनी जो मन परे ज्ञान रूप शक्ति है या फिर अवधि ज्ञान रूप शक्ति आत्मा की है, उस पर अभी आवरण पड़ा हुआ है, तो फिर वो शक्ति काम नहीं कर सकती। तो ऐसा ये क्षयोपशम कहलाता है। और ये इनके योग्य अलग अलग कर्म प्रकृतियां होती है। कर्म प्रकृतियां आठ प्रकार की हैं, फिर उन आठ में घाती अघाती के ऐसे दो भेद हैं, चार भेद उसमें अलग प्रकार से भी किए जाते हैं आठों को मिला करके, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। तो क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी को स्मृति में रखना कठिन नहीं, एकदम सरल है। आयु कर्म भव विपाकी है क्योंकि एक भव तक चलता है, तो उस भव में ही आयु कर्म फल देता है। फिर क्षेत्र विपाकी वो है कि एक शरीर से नए शरीर तक जाते समय बीच का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो जीव की आकृति होती है वो आकृति अपने पूर्व शरीर जैसी रहती है। तो पूर्व शरीर जैसी आकृति को बनाए रखने का काम उस क्षेत्र विपाकी कर्म में होता है, कर्म का होता है, वो कर्म है अनुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। ये कर्म के नाम है, नाम कर्म के भेद हैं। अब फिर घाती कर्म में अभी जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी को और समझ लेते हैं। जो पुद्गल का आलंबन लेकर के अपना फल दे वो पुद्गल विपाकी है। जैसे जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण, ये नाम कर्म है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण कौन से द्रव्य के गुण हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण वंत पुद्गलाह, सूत्र आ रहा है इसमें आगे। तो पुद्गल द्रव्य के गुण हैं, जीव के हो ही नहीं सकते, पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। तो किसी का शरीर गोरा होता है, किसी का सांवला होता है, तो ये वर्ण नाम कर्म के उदय से होता है। पुद्गल में वो अपना विपाक देते हैं तो पुद्गल विपाकी कर्म है। फिर जीव विपाकी कर्म किसको कहते हैं? जो जीव को फल देता है, यानी जीव को अनुभव होता है उसका। ये रंग का अनुभव, रंग में राग द्वेष जीव को हो सकता है लेकिन रंग का अनुभव जीव नहीं कर सकता है। रंग में राग द्वेष कर सकता है। अब कई लोग क्रीम लगाते रहते हैं, गोरे बन जाए गोरे बन जाए गोरे बन जाए, तो उनको उससे द्वेष है, जो रंग उनको मिला हुआ है वो उनको पसंद नहीं है। तो ये काम तो जीव कर सकता है लेकिन रंग का जो फल है, रंग उसको नहीं मिला है, जीव को रंग नहीं मिला है। रंग किसको मिला है? शरीर को मिला है। जीव का तो कोई रंग नहीं है पर जीव उसमें राग द्वेष तो कर सकता है, स्वतंत्र है वो, राग द्वेष छोड़ भी सकता है, दोनों बातें हैं, कर भी सकता है छोड़ भी सकता है, दोनों बातें हैं। तो वो पुद्गल विपाकी। फिर जीव विपाकी क्या है कि जो जीव को भोगना पड़ता है, जो फल, जो कर्म, जैसे जीव विपाकी में ये चारों घाती कर्म जीव विपाकी है, नाम कर्म में कई प्रकृतियां जीव विपाकी है, कुछ पुद्गल विपाकी है, फिर वेदनीय कर्म जीव विपाकी है, गोत्र कर्म जीव विपाकी है, आयु कर्म भव विपाकी है। तो आघाती कर्म में दो तो जीव विपाकी है, वेदनीय और गोत्र। नाम कर्म में जीव और पुद्गल विपाकी दोनों है। क्षेत्र विपाकी भी नाम कर्म का ही भेद है, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यक गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी। रास्ते में अपना आकार पिछले शरीर जैसा बना के रखना होता है उसको। आयु कर्म भव विपाकी है। तो ये चार प्रकार के कर्म भी आते हैं वर्गीकरण में। तो जीव विपाकी कर्म का उदाहरण क्या है? जीव विपाकी का उदाहरण ये है, यश और अपयश। किसी ने किसी को बदनाम किया और उसने पूरी तरह से उसका अनुभव किया उस बदनामी का, तो फिर ये कहा जा सकता है कि उसको अयश कीर्ति नाम का कर्म उदय में था, जैसे सीता जी। अब उसमें सदोष हो या निर्दोष हो ये एक अलग विषय है, पर वो जो बदनामी हुई और उस बदनामी को उस जीव ने भोगा, तो वो जीव विपाकी कर्म है, नाम कर्म होते हुए भी वो जीव विपाकी नाम कर्म है। अब एक स्थिति और भी बनती है कि जैसे मान लो किसी जीव के यश कीर्ति नाम कर्म का उदय हो और कोई षड्यंत्र करके उसको बदनाम करना चाहता है, तो वो बदनामी बैकफायर हो जाती है, करने वाले को ही नुकसान कर जाती है, और फिर जिसके यश कीर्ति का उदय चल रहा है उसको यश मिल जाता है, भले वो अपराधी हो। ये भी और ध्यान रखना, भले वो अपराधी हो लेकिन अगर यश कीर्ति का उदय है, हिसाब ऐसे ही चलता है, कर्मों का बड़ा विचित्र गणित है कि पूर्व जन्म में जिसने पुण्य किया है वो आज पाप भी करता रहे तो भी सुरक्षित है, और पूर्व जन्म में जिसने पाप किया है वो आज पुण्य भी करे तो भी उसको मुसीबतें झेलना पड़ती है। पर इसमें क्या है कि अगर कोई अंदर से टूट जाता है या हार मान लेता है तो काम नहीं चलता। पहली बात ये विचारने की है कि जीव का अंत नहीं है। अपने को लगता है कि हार मान करके अपन सब खत्म करो, बोले खेल खत्म करो, ये बहुत तंग आ गए हम, ऐसे खत्म नहीं होता। अनादि काल से जीव मिथ्यात्व के वशीभूत होकर अनंत जन्म धारण कर चुका है, इस खेल को खत्म करने का यही मोक्ष मार्ग है, बस कोई रास्ता नहीं है। जब तक उन कर्मों पर अपन विजय नहीं प्राप्त करेंगे तब तक कर्म अपने ऊपर विजयी रहेंगे, और कर्मों को जब विजय प्राप्त होती है जीव के ऊपर तब जीव पिटता है। जीव जब कर्मों पर विजय प्राप्त करता है तब कर्म पिटते हैं और कटते हैं। इसलिए ये जो भावों का गणित, ये तत्वार्थ सूत्र का अगर सही स्वाध्याय कर लिया जाए और इसको अपने जीवन की परिस्थितियों में अप्लाई किया जाए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इन सब के बारे में वर्णन किया जाता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब बताई जाती है, और जब लैब में वो चीज सामने होती है और फिर कोई प्रश्न करता है, डेमोन्स्ट्रेटर पूछता है कि व्हाट इज दिस, यू हैव स्टडीड इन योर क्लासेस, तुमने क्लास में पढ़ा था कि क्या है, बोलो क्या है, तो फिर जो विद्यार्थी वहां पढ़ करके अच्छी तरह पढ़ करके आया वो ऐसे देखता है, इट इज क्रिस्टलाइन, फिर ऐसे डायरेक्ट हाथ भी नहीं लगाता हर चीज को, क्योंकि वो भी उसको सिखाया गया है कि किसी भी केमिकल को सीधे सीधे हाथ नहीं लगाया जाता, तो वो ऐसे देखता है और हर प्रकार से देखता है, जो सेफ है उनको हाथ लगा करके छू भी लेता है, सुरक्षित है, तो फिर बोलता है कि सर दिस इज सोडियम क्लोराइड, या फिर दिस इज सुक्रोज, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट एटसेट्रा, और फिर उसको प्रयोग करवाते हैं वहां पर अलग अलग तरह के, और फिर केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स में अलग से उसको नंबर दिए जाते हैं, थ्योरी से आधे होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल के नंबर भी काउंट होते हैं। और यहां पर ये जो थ्योरी है इसमें इतनी बारीकी से सब कुछ बताया गया है, एक एक समय का गणित है इसमें, और इस गणित को समझने के बाद फिर विपाक विजय करना नहीं पड़ता, अपने आप चालू हो जाता है। हर स्थिति में ऐसा दिखता है कि देखो ये कैसे हो रहा है, ये सब, ये स्क्रीन पर ये कलर्स कैसे आ रहे हैं, मेरे जीवन के चित्रपट पर ये घटनाएं क्यों आ रही है, समझ में आता है कि हाँ ऐसा ही मैंने ही लिखा है ये सब, ये सारे सीन्स मैंने ही रेडी किए हैं, ये सारे दृश्य मेरे बना बनाए हैं। तो फिर वो शिकायत करना बंद कर देता है, तुम्हारे कारण मेरा काम बिगड़ गया, तुम जब भी आते हो तो मेरा सब बिगड़ जाता है। नहीं, पूरी तैयारी, एक कार्य का एक कारण हो ही नहीं सकता। ये वाक्य ध्यान में रखना, एक कार्य का एक कारण हो ही नहीं सकता, अनेक कारण होते हैं। तो अपन कषाय के कारण, वो ऐसी आदत है ना कषाय की कि कोई आलंबन मिल जाए बस मैं कषाय कर लूं, क्योंकि कषाय करते समय जो अंदर वेदना होती है, वो सुख रूप हो या दुख रूप हो, बस वो आदत ही पड़ी हुई है कि बस उस वेदना में मैं जाऊं। खाली खाली अच्छा नहीं लगता, बिना कषाय किए बिल्कुल फीका फीका लगता है। ये स्थिति है, ये बड़ी गंभीर बात है, इस पर विचार कर सकते हैं आप। और फिर जो उदय से होने वाले भाव हैं वो अवदयिक हैं, उसके 21 भेद हैं, बिना उदय के वो हो ही नहीं सकते। जैसे कषाय भाव है अवदयिक है, गतियां हैं देव गति, मनुष्य गति, नरक गति, तिरंज गति, ये बिना उदय के नहीं होते। तो जीव विपाकी की बात चली थी, तो उसमें यश कीर्ति एक उदाहरण मात्र था। चारों घातीय कर्म जीव विपाकी है, चारों घाती कर्म में एक भी प्रकृति ऐसी नहीं है जो जीव विपाकी ना हो, सभी प्रकृतियां जीव विपाकी हैं। घाती कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, फिर मोहनीय और अंतराय, जीव विपाकी डायरेक्ट जीव को फल देते हैं। मिथ्यात् जीव को मिथ्या दृष्टि बना देता है, क्रोध जीव को क्रोधी बना देता है, मान जीव को मानी बना देता है, माया जीव को कपटी बना देती है, लोभ जीव को लोभी बना देता है, वैसे वेद जीव को कामी बना देता है, हास्य जीव को हंसने वाला बना देता है। ये कर्मों का हिसाब किताब है, और इस कर्म को जीव के जीवन में जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें अंतरंग कारण का है, बाह्य कारण नौकर्म होता है। और कर्म और नौकर्म दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। अभी तक सब यही मानते चले आ रहे हैं कि सब कुछ कर्मों से हो रहा है, नहीं, नौकर्म भी वहां पर बहुत आवश्यक है। नौकर्म यानी बाह्य जितने भी ये साधन है, वो बहिरंग कारण होना आवश्यक है ना। असाता का उदय है, देवों में भी है, लेकिन असाता के साधन नहीं है ना वहां, तो क्या फल मिलेगा? असाता के साधन भी होना आवश्यक है ना। नरकों में साता का उदय है, तो फिर साता के साधन न होने से उनको साता कैसे मिल सकती है? तो कर्म का जो फल होता है उसमें नौकर्म सहयोगी होता है, नौकर्म के बिना काम नहीं चलता। बाहर तेज धूप हो, ऐसे खुले पैर जाने से पैर जलने लग जाए, छाले पड़ जाए, तो आप कुछ पहन करके जाते हैं पैरों में, तो पैरों की रक्षा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो साता का नौकर्म है, और उस नौकर्म को आप छोड़ो, अभी पता चल जाएगा क्या होता है उसका परिणाम। एकदम गर्मा गर्म रोड है, आप चप्पल से बाहर निकालो पैर, जमीन पर रखो, देखो कौन से कर्म का उदय आता है, साता का कि असाता का। तो नौकर्म का समागम मिलने पर कर्म के उदय में उथल पुथल संभावित है, वो स्थिति बन जाती है। जैसे कोई एकदम स्वस्थ मनुष्य है और उसको जो आजकल ब्लड चढ़ाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, वो कॉन्टेमिनेटेड दूषित ब्लड हो, वो अगर उसको चढ़ जाए किसी कारण, वैसे वो उसको वो वाली बीमारियां नहीं है, उसको बस कमजोरी के कारण वैसा करना पड़ रहा है डॉक्टरों को, जो भी कारण हो, वो अनिवार्य हो या ना हो ये एक अलग विषय है, लेकिन मान लो चढ़ा दिया और वो ब्लड कॉन्टेमिनेट, माने उसमें विषाणु था, तो क्या हुआ? साता का उदय असाता में परिवर्तित हो जाता है, उसको बीमारी हो जाती है, हेपेटाइटिस, वायरस वाला ब्लड चढ़ जाए उसको तो बीमारी हो जाती है, और 6 महीने में उसकी जान खतरे में आ जाती है, पूरा शरीर सूख कर कांटा हो जाता है, मृत्यु के मुख में चला जाता है। क्या है ये? ये कर्म और नौकर्म का हिसाब है। अगर नौकर्म को आप अमान्य करते हैं शास्त्र चर्चा में, आप अपने जीवन में तो अमान्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि भूख लगती है तो आप भोजन खाते हो, क्योंकि उस नौकर्म से साता होती है, भूख असाता है, तो असाता को दूर करने के लिए भोजन करना, एक नौकर्म का आलंबन लेना आपकी आदत में है, आपको पता भी नहीं रहता कि आप क्यों ऐसा सब कर रहे हैं, पर आपको ये पता है कि इससे फायदा है, तो फायदे का काम सब लोग करते हैं, पर अगर सिद्धांत से विचार करें तो ये प्रक्रिया होती है उस काल में। इसी प्रकार जैसे ही कोई बीमार पड़ता है तो क्या करता है? दवाई लेता है, या हॉस्पिटल जाता है, या डॉक्टर को दिखाता है, और तो कुछ नहीं करता वो। अगर उसको कर्मों पर इतना प्रबल विश्वास है तो फिर उसको पुण्य की प्रतीक्षा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्योंकि पुण्य से ही ठीक होता है जीव, बीमार हुआ है पाप से, स्वस्थ होगा पुण्य से, तो फिर बीच में डॉक्टर को कहां से ले आया है, और फालतू पैसे क्यों खर्च कर रहा हूं? समझ में आ रही बात? तो जैन कर्म सिद्धांत में नौकर्म का बड़ा महत्व है। एक जीव को 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक सम्यक दर्शन होता है, कर डाले क्षय और क्षयिक सम्यक दृष्टि बन जाए, कौन रोक रहा है? पर आचार्य बोलते हैं कि जब तक केवली और श्रुत केवली के चरणों में नहीं जाएगा तब तक नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि वहां जाने के बाद ही वो भाव बनते हैं जो क्षय करने में समर्थ है, अलग से कहीं चले जाओ कुछ नहीं हो सकता, भले आत्मा में अनंत शक्ति सबके पास है, पर क्या उसका काम है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों अपेक्षित है वहां पर, अकेले भाव नहीं होते, वो भाव भी क्षेत्र सापेक्ष है, क्योंकि कर्म भूमि में जन्म लेने वाला ही क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। कितनी बड़ी बात है, सर्वार्थ सिद्धि के देव नहीं कर सकते, ये चर्चा की थी पहले। तो ये सारी बातें हैं कर्म सिद्धांत में, ये बातें जरूरी हैं, क्योंकि ये जीव तत्व का वर्णन है, इसमें जीव तत्वार्थ का प्रकरण है, पर चूंकि ये भावों की चर्चा आई है तो इसमें ये उदय उपशम क्षय क्षय उपशम कर्म संबंधी होते हैं, इसलिए हमने यहां पर कर्म की भी थोड़ी सी चर्चा की है। वैसे अध्याय जो है वो जीव का अध्याय है, पर इतने से कुछ आपका ज्ञान स्पष्ट हुआ कि ये कैसे चलती है ये व्यवस्था, और इसमें से फिर अपनी विशुद्धि के योग्य जो पुरुषार्थ आपको करना है वो आप समझ सकते हैं क्या करना है। बस संतुलन जैसे बिगड़ता है जीव का, जैसे ही वो कषाय के वेग में अपना बैलेंस खोता है तो फिर वो खतरे में आ जाता है, क्योंकि तब कर्म हावी होते हैं, जीव दुर्बल होता है। इसलिए मुख्य कार्य यह है जीव का कि तूफान आ जाए कर्म के, लेकिन वो अपने आप में थोड़ा दृढ़ रहे कि नहीं, ये औदयिक भाव है, असाता अधिक उदय में आ रहे हैं, फल दे रहे हैं, आ रहे हैं, मुझे आगम का आलंबन नहीं छोड़ना है, मेरी आगम पर श्रद्धा अवश्य है, पर उस श्रद्धा से यहां पर मैं कर्मों के साथ नहीं लड़ सकता, श्रद्धा के साथ मुझे थोड़ा पुरुषार्थ करना होगा कि कर्म उदय में है, अगर बहुत तीव्र उदय है तो बह जाने दो, उसको नमोकार मंत्र पढ़ते रहो, क्योंकि ज्यादा कुछ कर नहीं सकते तीव्र हृदय में, बहुत तीव्र हृदय होता है ना कर्म का, कुछ किया नहीं जा सकता, नमोकार कर चलने दो, बड़ी बात है। थोड़ा मध्यम उदय हो तो फिर अपन ध्यान कर सकते हैं, अपन और भी भक्ति आदि बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो वो सब करते रहना है, क्योंकि अनंत कर्म परमाणु जीव के साथ बंधे हुए हैं, तो पुरुषार्थ छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है, इसलिए अपने प्रयत्नों में तत्पर रहना है। हाँ, दवाई नौकर में, तो ये शरीर भी नौकर में, वैसे देखा जाए तो शरीर भी नौकर में, कि जिसके आलंबन से कर्म अपना फल देता है उस बाह्य वस्तु को या फिर उस द्रव्य को नौकर्म कहते हैं। नौकर्म जो है वो कर्म से संबंध रखने वाली वस्तु है, निमित्त जो है वो तो जैसे अग्नि भोजन पकने में निमित्त है, उसमें कोई कर्म और नो उसकी कोई बात नहीं है, यहां पर जो कर्म के लिए जो सहकारी है वो नो कर्म है। नो का अर्थ ईषत होता है, एक तो कर्म वो है जो द्रव्य कर्म अपने अंदर यानावरण आदि प्रकृतियों के रूप में बंधे पड़े हैं, और दूसरे जो वो कर्म है वो पुद्गल द्रव्य है, वो पदार्थ है जो उनके फल में सहायक बनते हैं, तो उनको नौकर्म कहते हैं, जिनके आलंबन से कर्म फलित होता है वो नौकर्म कहलाते हैं। असाता का नौकर्म वो होगी, जो स्थितियां बनी वो सब असाता के नौकर्म के रूप में, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ तो कोई ना कोई वस्तु से हुआ ना, ऐसे हवा से तो नहीं हुआ एक्सीडेंट, तो वो जो वस्तु थी वो नौकर्म थी, असाता का नौकर्म थी। नमोकार मंत्र या जो भी जो योग्य है आपके धर्म ध्यान में वो कर सकते हैं, किसी हाल में मतलब मन में ध्यान कर सकते हैं ना, ध्यायेत पंच नमस्कार है, अपवित्र पवित्र हुआ, सुस्थिताम सर्वावस्थाम गतोपि वा, यह स्मरेत परमात्मा नाम सब आया अभ्यंतरिषि, परमात्मा का स्मरण भी कर सकते हैं और फिर ध्यान भी कर सकते हैं नमोकार का। फिर द्रव्यात्म लाभ मात्र हेतु का परिणाम, तो द्रव्य का आत्मलाभ यानी जो अस्तित्व है उसमें हेतुभूत जो भाव, यानी जो द्रव्य के निजी भाव है, जिसके लिए न कर्म के उदय की जरूरत है, न उपशम की, न क्षय की, न क्षय उपशम की, कर्म निरपेक्ष जो भाव जीव के स्वतः के भाव होते हैं उनको परिणाम कहते हैं, और उस उन परिणामों में जो होने वाला भाव है वो पारिणामिक है, और वो पारिणामिक भाव क्या है, जीवत्व, जीव में जो जीवपना है उसके लिए और कौन सहायक हो सकता है, जीवपना है इसलिए वो जीव है, तो वो पारिणामिक भाव है। इसी तरह जीव में भव्यत्व और अभव्यत्व भी होते हैं, ये भी पारिणामिक है, इसमें कर्मों का कोई लेना देना नहीं होता है। इसको ध्यान से सुना आप लोगों ने सभी, क्योंकि इसमें अगर आपका ध्यान बट गया तो आपने बहुत कीमती चीज खो दी, रिकॉर्डिंग में सुनने में अंतर पड़ता है। अब इनमें भव्य और अभव्य जीव की अपेक्षा विचार करें, आगे आने वाले हैं भव्य और अभव्य, तो अभव्य जीव में औपशमिक और क्षायिक भाव नहीं होते, बाकी तीन भाव होते हैं, औदयिक, क्षायोपशमिक जिसको मिश्र कह रहे हैं, और पारिणामिक। औपशमिक और क्षायिक भाव सम्यक दर्शन होने पर शुरू होते हैं, उसके पहले नहीं होते, मिथ्यात्व अवस्था में अभव्य जीव को भी नहीं होते। द्विनवाष्टादशाइक विंशति त्रिभेदा यथा क्रम। दूसरे सूत्र में आचार्य कहते हैं कि जो क्रम पहले सूत्र में था औपशमिक, तो यहां द्वि उसके साथ जोड़ना, दो भेद है। क्षायिक, दूसरा भाव क्षायिक था, नव, यहां नव लिखा। फिर मिश्रश्च, तो मिश्र के अष्टादश। औदयिक, एक विंशति, अष्टादश यानी 18, एक विंशति यानी 21। और पारिणामिक उच्च त्रिभेदा, पारिणामिक के तीन भेद हैं, कौन से भेद नहीं बता रहे। यद्यवम औपशमिकस्य कौ द्वौ भेदौ इति अतः, अगर ऐसी बात है तो फिर आप बताइए कि औपशमिक भाव के दो भेद कौन से हैं। तो आचार्य महाराज इस प्रश्न के उठने पर कहते हैं सम्यक्त्व चारित्रे, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। व्याख्यात लक्षण है सम्यक्त्व चारित्र, सम्यक्त्व और चारित्र के लक्षण हम बतला चुके हैं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और सम्यक चारित्र क्या है, कि कषायों के क्षय उपशम और क्षय उपशम से जो असंयम भाव से ऊपर उठकर अणुव्रत महाव्रत आदि अंगीकार करके जो भावों की शुद्धि प्राप्त होती है वो सम्यक चारित्र है। औपशमिकत्व कथम इति चेत उच्यते, औपशमिक भाव कैसे होता है यदि ऐसा प्रश्न हो किसी का, तो आचार्य कहते हैं कहा जाता है कैसे होता है। चारित्र मोह द्विविध, चारित्र मोह के दो भेद, कषाय वेदिनी और नो कषाय वेदिनी चीति, कषाय और नो कषाय, वेदनी शब्द साथ में जुड़ा हुआ है। तत्र कषाय वेदनी, वो वाला वेदनी अलग है, साता असाता, ये कषाय नो कषाय वेदनी अलग है, ये घाती कर्म है, वो अघाती है, साता असाता। तत्र कषाय वेदनीय से भेदा अनंतानुबंधिनः क्रोधमान माया लोभाश्चत्वारः। कषाय वेदनी के चार भेद लेना, भी औपशमिक भाव की चर्चा है तो चार भेद है कषायों के, कषाय वेदनी के, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, ये चार। दर्शन मोह से त्रयो भेदः, पर दर्शन मोह के तीन भेद है, मतलब ये हुआ कि मोहनी के दो भेद किए, चारित्र मोह दर्शन मोह, और चारित्र मोह में अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ इन चार प्रकृतियों को पकड़ा है इस विषय को समझने के लिए। और दर्शन मोह का अर्थ होता है जो श्रद्धान को भ्रमित करे, चारित्र मोह जो है वो आचरण को भ्रमित करता है। तो श्रद्धान को भ्रमित करने वाले कर्म तीन है, सम्यक्तम मिथ्यात्म सम्यक मिथ्यात्म इति, सम्यक्त्व प्रकृति, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये कर्मों के नाम है। तो आसाम सप्ताम प्रकृति नाम उपशमाद औपशमिकम सम्यक्तुम, इन सात कर्म प्रकृतियों के उपशम होने पर, उपशम यानी फिटकरी घुमा दो मिट्टी नीचे बैठ जाए, ऐसे भाव जीव के हो जाएं कि वो नीचे बैठ जाए अंतर्मुहूर्त के लिए, तो वो औपशमिक सम्यक्त होता है। अब बहुत गंभीर प्रश्न है, अनादि मिथ्यादिष्टेर भव्यस्य कर्मोदयापादित कालुषी सति कुतस्तद उपशम। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कोई भव्य है, तो अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य जीव के कर्मोदय से प्राप्त कलुषता के रहते हुए, यानी अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि कर्म का उदय चल रहा, कलुषता अंदर बनी हुई है, यानी भावों में शुद्धता बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कुतस्तद उपशम, उन सात प्रकृतियों का उपशम कैसे हो सकता है। तो आचार्य महाराज जो उत्तर दे रहे सावधानी से सुनने योग्य है, काल लब्ध्यादि निमित्तत्वात्, काल लब्धि आदि का निमित्त होने से वो उपशम करता है। काल लब्धि, ये जो शब्द है इसमें दो शब्द है, काल और लब्धि। लब्धि का अर्थ लंबनम लब्धि प्राप्तिरित्यर्थ, लब्धि का अर्थ होता है प्राप्ति, और काल लब्धि का अर्थ क्या होता है? काल की प्राप्ति। यहां बहुत बड़ी चूक हो जाती है, क्या होता है कि समास करते समय अगर किसी ने षष्ठी तत्पुरुष कर दिया सप्तमी तत्पुरुष का, तो फिर वो अर्थांतर हो जाता है, यानी जो अर्थापत्ति निकलती है, जो निष्कर्ष निकलता है, वो आचार्य के अभिप्राय से भिन्न निकलता है। काल लब्धि का अर्थ किसी से भी पूछो, वो बोलेगा कि उस समय की प्राप्ति होगी तब काम हो जाएगा। क्या यहां पर आचार्य महाराज ये कह रहे हैं काल लब्धि का मतलब समय की प्राप्ति? विचारने की बात। अभी आज अपन पढ़ते जा रहे हैं, अभी केवल ये प्रश्न आपने बीच में आपके सामने रख दिया। काल लब्ध्यादि निमित्तत्वात्, जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जिसके अंदर कलुषित भाव भरे हुए हैं, मिथ्यात्व का उदय चला आ रहा है, एक वेग से चल रहा है अनादिकाल से अनंत भवों से, उस मिथ्यात्व का उपशम कैसे संभव है? ये शंकाकार का प्रश्न था। तो आचार्य उत्तर देते हैं कि काल लब्धि आदि का निमित्त होने से ये घटना संभव है। अनादि मिथ्या दृष्टि पहली बार सम्यक तो प्राप्त कर रहा है, तो वो कैसी घटना हो रही है उसका चित्रण है। तत्र काल लब्धि स्तावत, अब उसमें काल लब्धि क्या वस्तु है वो समझा रहे हैं। कर्माविष्ट आत्मा भव्य कालेर्द पुद्गल परिवर्तनाख्ये अवशिष्टे प्रथम सम्यक्त्व ग्रहण से योग्यो भवति नाधिके एका इति इयम एका काल लब्धि। कर्मों से आविष्ट जो आत्मा है, कोई भव्य आत्मा है, वह अर्ध पुद्गल परिवर्तन नाम का एक काल होता है। जैसे काल के बहुत सारे नाम हैं, ये दिवस माह पक्ष ये सब काल के ही नाम है, और किसी के तो नाम नहीं है, ये काल के ही नाम है। तो वैसे एक अर्ध पुद्गल नाम का काल होता है, अर्ध पुद्गल परिवर्तन। तो अर्ध पुद्गल परिवर्तन अवशिष्ट होने पर प्रथम सम्यक्त्व तो ग्रहण से योग्यो भवति नाधिके इति इयम एका काल लब्धि। आचार्य कह रहे हैं कि कोई कर्मों से घिरा हुआ आत्मा अनादि मिथ्या दृष्टि है, वो सम्यक्त्व तो प्राप्ति के योग्य कब होता है? तो आचार्य कहते हैं कि ये इतना काल उसको प्राप्त हो जाता है तब होता है। इतना काल प्राप्त होने का मतलब नाधि के साथ में ये भी कह रहे हैं, अगर अधिक काल होगा तो वो सम्यक्त ग्रहण के योग्य नहीं हो सकता। तो किसी जीव का अपन ऐसे एक कल्पना करें कि अनादि काल से चला आ रहा है जीव, अब उसका काल, उसका संसार काल, क्योंकि पुद्गल परिवर्तन जो है वो संसार भ्रमण का ही एक नाम है। पांच प्रकार का भ्रमण होता है संसार में, पंच परिवर्तन कहते हैं उसको, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव। तो उसमें पुद्गल परिवर्तन द्रव्य परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो इतना अर्ध पुद्गल परिवर्तन, ये एक पुद्गल परिवर्तन, दो पुद्गल परिवर्तन, तीन पुद्गल परिवर्तन, वो सब पार कर लिया उसने, और अब उसके संसार का काल अर्ध पुद्गल परिवर्तन रह गया। तो इतना काल जो बचा उसकी लब्धि, यहां पर याद रखना कि सम्यक्त तो प्राप्ति के काल की लब्धि नहीं कह रहे हैं, कालस्य लब्धि। तो सम्यक तो प्राप्ति कालस्य लब्धि ऐसा नहीं कह रहे, सम्यक की योग्यता वहां शुरू होती है, सम्यक की प्राप्ति वहां हो ही जाए ऐसा नहीं है। किसी जीव का अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल रह गया, उतना काल पूरा करके वो मोक्ष प्राप्त करने वाला है, तो यहां से वो शुरू हो जाती है उसकी पात्रता। जैसे अपन यहां पर जब वोटिंग की पात्रता कितने उम्र में होती है, 18 साल, दोनों के लिए ना, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, दोनों के लिए। तो यहां पर ये उल्टा क्रम है, समझ लो। यहां अधिकतम काल इतना बता रहे हैं, इससे अधिक काल होगा तो सम्यक के योग्य नहीं होगा, और वहां पर वोटिंग में कम से कम काल कितना है, 18 है, फिर अधिक काल कितना है, तो उम्र भर है ना। अब कोई वोट न डाले तो कोई उस पर सजा होती है क्या वोट न डालने की? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, न डाले तो न डाले। वैसे यहां पर इतना काल बचा है, सम्यक ग्रहण के योग्य हो गया, उसका नाम काल लब्धि था। तो अब वो ग्रहण की योग्यता को प्राप्त करना लब्धि है, काल लब्धि, ध्यान देना। ग्रहण करना काल लब्धि नहीं है। यहां क्या कह रहे हैं, सम्यक ग्रहण के योग्य होता है, तो वो जो योग्यता आ गई वहां, तो वो क्वालिफाइड हो गया। अब वो अगर प्राप्त कर ले तो प्राप्त कर ले, ना करे तो ना करे, वोट नहीं डालना तो मत डालो, आपको दोनों पार्टी ना पसंद है मत मत डालो, फिर क्या है? ये स्थिति है। तो उस योग्यता की प्राप्ति का नाम काल लब्धि है, ये एक काल लब्धि हुई। काल लब्धि के कई प्रकार हैं। अपरा, दूसरी काल लब्धि कैसी है, कर्म स्थिति का काल लब्धि, कर्म स्थितियों को लेकर के काल लब्धि बतलाते हैं। जिस काल में कर्मों की स्थिति जैसी यहां बता रहे हैं वैसी बन जाए, वो काल भी सम्यक तो प्राप्ति का काल होता है। जैसे उत्कृष्ट स्थिति की ईशु कर्मसु, अगर सभी कर्मों की स्थितियां बहुत अधिक है, उत्कृष्ट है, मिथ्यात्व 70 कोड़ा कोड़ी है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय कर्म 30 30 कोड़ा कोड़ी सागर के बंधे पड़े हैं, नाम और गोत्र कर्म 20 20 कोड़ा कोड़ी सागर के हैं, ये अगर कर्मों की इतनी इतनी अधिक स्थितियां होंगी, चारित्र मुनि 40 कोड़ा कोड़ी सागर का बंधा पड़ा है, ये उत्कृष्ट स्थितियां हैं। इतनी कोड़ा कोड़ी स्थितियों में कोई सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, भले वो काल लब्धि आ चुकी हो पहली वाली, समझ रहे, पहली वाली माने अर्धपुद्गल परिवर्तन काल बचा है उसका, लेकिन अभी ये वाली काल लब्धि नहीं आई है उसकी। जिस काल लब्धि में कर्मों की स्थिति का विचार किया जाता है, अभी उत्कृष्ट स्थितियां चल रही है कर्मों की, तो उत्कृष्ट स्थितियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य नहीं होता। और कहते हैं जघन्य स्थिति की ईशु च, और अगर जघन्य स्थितियां हो कर्मों की, जघन्य स्थिति कितनी है, तो अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनी यस्य, वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त है, और वो जघन्य स्थिति 10वें गुणस्थान में बंधती है 12 मुहूर्त की। तो अपन ये नहीं सोच सकते हैं कि भाई आज अगर मैंने जघन्य स्थिति बांध ली 12 मुहूर्त की, तो फिर 12 मुहूर्त में मुझे तुरंत फल मिलने वाला है आज वेदनी का, नहीं मिलेगा, क्योंकि 12 मुहूर्त की जघन्य स्थिति जो होती है वो 10वें गुणस्थान में बनती है, उपशम श्रेणी में, शपक में भी बनती है, शपक में फिर वापस आना नहीं होता है नीचे। तो जघन्य स्थिति वेदनी की इतनी हो गई, और नाम गोत्र यो रष्टौ, नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त है, वो भी वहीं बन रही है। तो ऐसे जघन्य स्थितियां भी दी हुई है, और उसमें शेषाणाम अंतर्मुहूर्त, बाकी कर्मों की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है, लेकिन जघन्य स्थिति अगर होगी आपके कर्मों की तो भी सम्यक की योग्य नहीं बनेंगे। प्रथम सम्यक लाभो न भवति। फिर प्रश्न किया किसी ने, क्वतर ही भवति, फिर कितनी स्थिति होने पर कर्मों की कितनी स्थिति होने पर प्रथम सम्यक का लाभ होता है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, अंत कोटा कोटि सागरोपमस्थितिकेषु कर्मसु बन्धमापद्यमानेषु विशुद्ध परिणाम वशात सत्कर्मसु च ततः संखेय सागरोपम सहस्रोनायाम अंतः कोटा कोटि सागरोपमस्थितो स्थापितेषु प्रथम सम्यक् तो योग्यो भवति। ध्यान से समझना, थोड़ा शास्त्रीय है विषय। बंधने वाले जो कर्म है उनकी स्थिति अंतः कोटा कोटी हो। अंतः कोटा कोटी मतलब एक कोड़ा कोड़ी सागर से अंदर में हो, एक कोड़ा कोड़ी पूरी ना बंध रही हो, उससे कम बंध रही हो कर्मों की। जो जितने भी नवीन कर्म बंध रहे हैं अभी इस समय, वो एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम हो। और सत कर्मसु, सत्ता में जो कर्म है, पहले से जो पुराने बंधे हुए कर्म है, वो कैसे हो? बोले ततः संख्य सागरोपम सहस्रोनायाम, जो नवीन बंध रहे हैं कर्म उनसे संख्यात हजार सागरोपम कम हो उनकी स्थिति। अंत कोटा कोटी सागरोपम की स्थिति से संख्यात हजार सागरोपम कम स्थिति वाले बंधे हुए पुराने कर्म हो तो उनको एक प्रक्रिया से उस तरह से स्थापित किया जाता है, तब प्रथम सम्यक्त के योग्य होता है। ये सम्यक दर्शन एक ऐसा रत्न है कि इसको प्राप्त किए बिना कोई संसार से पार नहीं हुआ। और इसको प्राप्त करने की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसका यहां पर वर्णन चल रहा है। तो वो काल लब्धि के नाम से आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि ऐसा समय आया है जब ये परिस्थिति बन जाए अंदर की, बंधे वाले कर्म एक कोड़ा कोड़ी सागर से कम स्थिति वाले हो और बंधे हुए कर्म कितने हो बोलो, संख्यात हजार सागरोपम उससे भी कम हो, जो बंध रहे उनसे भी कम स्थिति वाले हो, तब ये सम्यक्त के योग्य भवति, योग्य होता है। अभी योग्य योग्य की बात कर रहे हैं, अभी तक सम्यक्त हो रहा है ऐसा नहीं कह रहे। योग्यता क्वालिफिकेशन इतने जरूरी है। और तीसरी काल लब्धि और बता रहे हैं, अपराकाल लब्धिर भवापेक्षया, तीसरी काल लब्धि भव से अपेक्षित है। कैसी? तो बोले भव्य। पहली शर्त तो उसमें यह है कि भव्य जीव को ही सम्यक दर्शन होना है, तो पहली बात तो भव्य होना अनिवार्य है। फिर दूसरी बात पंच इंद्रिय, ये लिख सकते हैं जिनको लिखना हो तो, पहली शर्त भव्य होगा, दूसरा पंचेंद्रिय होगा, यानी चतुर इंद्रिय तक के जीव सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते। ये भी एक काल की लब्धि है कि जिस काल में आपके पास ये पात्रता होगी तब आप सम्यक के योग्य होंगे, उसका नाम काल लब्धि है। दूसरी शर्त पंचेंद्रिय, तीसरी शर्त दे रहे संजनी, सैनी हो, मन वाला हो। चौथी शर्त है पर्याप्तक, प्राणों को धारण करने की शक्ति का नाम पर्याप्ति है। वो जिसने प्राप्त नहीं की है वो अपर्याप्तक है, और जिसने प्राप्त की है वो पर्याप्तक है। तो प्राणों को धारण करने की शक्ति जो प्राप्त कर चुका है वही सम्यक्त के योग्य हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। उसका मन काम ही नहीं करेगा अगर पर्याप्तक नहीं होगा तो विचार कैसे करेगा, और विचार किए बिना ये सारी स्थितियां कैसे बनेगी? ज्ञान का विषय जो तत्वार्थ है वो ज्ञान का विषय बनता है, फिर श्रद्धान में स्थिर होता है, तो ज्ञान के बिना श्रद्धान नहीं होता है। श्रद्धान के पहले ज्ञान मिथ्या ज्ञान होता है, और जैसे ही श्रद्धान होता है तो वो ज्ञान जो जाना था सम्यक हो जाता है। और कैसा होता है? सर्व विशुद्ध, सर्व विशुद्ध यानी भावों की निर्मलता को प्राप्त होता है, शुभ लिश्या हो जाती है उसकी, तब वो प्रथम सम्यक उत्पादयति उत्पन्न कर सकता है। आदि शब्देन, आदि शब्द से क्या लेना? काल लब्ध्यादि, ये जो शब्द था ना शुरू में, एक आदि शब्द आया था काल लब्धि, आदि के निमित्त का निमित्त होने से अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक को प्राप्त कर सकता है। तो आदि शब्द का क्या अर्थ लेना? आदि शब्देन जाति स्मरणादि ही परिगृह्यते। आदि शब्द से वो जो निमित्त बताए छह बताए ना साधन सम्यक दर्शन के, जाति स्मरण, धर्म श्रवण, फिर जिन बिंब दर्शन, वेदनानुभव, देवर्थी दर्शन, जिन महिम दर्शन, ऐसे छह हेतु बतलाए थे, अपन पढ़ चुके हैं। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधान था, इस सूत्र में अपन ने पढ़ा था, तो वो भी होना जरूरी है। आदि का मतलब वो चीजें भी होना जरूरी है वहां पर। तो इतनी सब स्थितियां जब बन जाती है तब वो सम्यक की योग्यता का काल होता है। उस लब्धि का नाम, उस प्राप्ति का नाम काल लब्धि है। कितनी जबरदस्त बात है। कृत्स्नस्य मोहनीयस्य औपशमयो, कृत्स्नस्य मोहनीयस्य शमात औपशमिकं चारित्रम, उपशमात लिखा है, विग्रह करेंगे तो उपशमात निकलेगा। संपूर्ण मोहनीय का उपशम होने से औपशमिक चारित्र होता है। दर्शन मोह का भी उपशम हो गया, चारित्र मोह का भी उपशम हो गया, तो बिल्कुल मोहनीय का एक परमाणु भी उदय में नहीं है। तब जो चारित्र होता है यथाख्यात चारित्र, औपशमिक चारित्र कहलाता है। तत्र सम्यक्तस्यादौ वचनम तत्पूर्वकत्वात् चारित्रस्य, इसमें क्या है कि सम्यक्त्व को पहले रखने का कारण केवल इतना ही है कि सम्यक्त न हो तो चारित्र न हो, इसलिए सम्यक्त को पहले रखना आवश्यक है। इस तरह ये औपशमिक भावों के दो भेद अपन ने अभी पढ़े। खास इसमें सम्यक्त का वर्णन विशेष था, तो इसको एक बार दोहरा सकते हैं आप दोबारा। इसको यहां पर तो अपन ने वाचना के तहत पढ़ लिया, एक बार आप स्मरण कर लेना या फिर जो लिखा हो उसको एक बार देख लेना या फिर सुन भी सकते हैं दोबारा। जैनम जयतु शासनम।